ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की प्रातःकालीन भागवत कक्षा में, और आपके सामने आज का प्रवक्ता, या देखना होगा प्रवक्ता या वक्ता, प्राण गोविंद दास। और आज हम चर्चा करेंगे बहुत महत्वपूर्ण विषय पे, पांचवें स्कंद का 18वां अध्याय 18वां श्लोक। इसका शीर्षक मैंने दिया है आज की चर्चा का, वह है प्रार्थनाओं का महत्व। क्या मतलब, क्या प्रार्थना करनी चाहिए, नहीं क्यों प्रार्थना करनी चाहिए पहला भाग, दूसरा भाग कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, और तीसरा क्यों क्या प्रार्थना करनी चाहिए। इसको बोलने से पहले, इस पे चर्चा करने से पहले, अगली स्लाइड पे जाने से पहले, सबको स्लाइड दिख रही होगी ना, तो स्लाइड पे जाने से पहले एक महत्वपूर्ण चीज, मतलब मेरे दिमाग में जो आई जिस दिन मुझे बोला गया ये क्लास देने के लिए, तो मैं जब इस प्रार्थना को पढ़ रहा था, आज की प्रार्थना रमा देवी ने की है। इससे पहले जो प्रार्थना हुई, आप देखेंगे पांचवें स्कंद में प्रार्थना ही प्रार्थनाएं हैं। जहां से सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज पूछते हैं कि हे परीक्षित महाराज, ये सृष्टि की गठन कैसे हुआ है, किसने किया है, और मुझे पूरी जानकारी चाहिए, ये ब्रह्मांड किस तरीके से है, इसकी ओर छोर में इसका मापदंड क्या है, ये जैसे ही पूछते हैं उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी जो डिस्क्रिप्शन चालू करते हैं, वो एक एक वर्ष का डिस्क्रिप्शन जब चालू करते हैं, वो इतना ही बोलते हैं इस वर्ष में ये अधिष्ठाता है, ये राजा है, और ये अपने नागरिकों के साथ ये प्रार्थना करता है, फिर यह अधिष्ठाता ये प्रार्थना करता है। कहीं पे भी मापदंड अभी तक शुरू नहीं हुआ, सृष्टि का मापदंड। सृष्टि का मापदंड जो चालू होगा, ब्रह्मांड का मापदंड, वो 20वें अध्याय से चालू होगा, या 18वां चल रहा है अभी, अगले अध्याय से सृष्टि का या ब्रह्मांड का मापदंड, और 20 से 26 तक बस चलेगा। इतने में पूरे ब्रह्मांड का मापदंड दे दिया। हम आज देखेंगे थोड़ा शुरुआत में, पहले भाग में, क्या ये संभव है इतने बड़े सृष्टि का निर्माण, और सिर्फ 6 अध्याय में दे दिया। तो मैं जब ये प्रार्थना पढ़ रहा था, मैं यही निष्कर्ष पे आया कि भागवत हमको सिखाता है भगवान को पूरी तरीके से शरणागत होना, और किस तरीके से, किस भाव में हम प्रार्थना करें, इसलिए मैंने ये शीर्षक दिया। और जब मैं प्रार्थना पढ़ रहा था, मेरे को एक चीज क्लिक की, वो चीज ये थी कि भगवान कितने महान हैं और कितने सुंदर हैं, कितने मधुर हैं। भगवान जो बोलते हैं वो मधुर हैं, भगवान के भक्त मधुर हैं, भगवान के भक्त जो बोलते हैं वो मधुर हैं, और इतना मधुर है, इतना मधुर है कि मेरे जैसा गधा बद्ध जीव जो नास्तिक है, ऑलमोस्ट, थोड़ा सा सुधरा होगा लेकिन ऑलमोस्ट नास्तिक है, वो भी इसको जब सुनता है तो उसको भी मधुरता लगती है, और वो भी बड़ा खुश होता है, बड़ा आनंदी होता है, दिलचस्पी आती है कुछ इसके बारे में बखान करें। और इसलिए मैंने यह स्लाइड शो प्रिपेयर किया। तो आप लोगों से सबसे सादर निवेदन है कि कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि बहुत कम समय में इसको मैं चर्चा कर सकूं। तीन भाग हैं इसके आज के वक्तव्य के, और ये तीन भाग इस प्रकार से हैं। पहला भाग आप जो बोर्ड पे देख रहे हैं, प्रार्थनाओं की आवश्यकता क्या है हमारे जीवन में। तो प्रभुपाद इसको मैंने इसको अलग तरीके से लिया है, प्रभुपाद के श्लोक को पहले नहीं ले रहा हूं मैं, तात्पर्य के पहले पैराग्राफ को पहले भाग में हम डिस्कस करेंगे, सीधा पैराग्राफ को, ठीक है। क्यों ये? क्योंकि प्रार्थना करने से पहले प्रार्थना का मूड आ जाए। तो दूसरे भाग में आप जो दूसरा भाग वहां पे बोर्ड पे देख रहे हैं, दूसरे भाग में श्लोक और तात्पर्य लेंगे और श्लोक को तब हम रिसाइट करेंगे। 15 मिनट के बाद, अभी से कुछ 15 या 20 मिनट के बाद हम श्लोक रिसाइटेशन करेंगे। और ये श्लोक जाता इस प्रकार से है, ओम राम ह्रीम ह्रूम, और हंसिएगा नहीं, अभी अभी मैं रिसाइट करूंगा तो आप लोगों को हंसी आ सकती है। कुछ लोगों की, नए लोग अभी आएंगे, संडे का समय है तो कुछ नए लोग हैं, अभी रिसाइट कर दूं तो हंसी आ सकती है। हम बाहर सुनते थे ना ऐसे राम ह्रीम ह्रूम, मजाक उड़ाते थे, लेकिन ये जो शुरुआत के शब्द हैं राम ह्रीम ह्रूम, इनको बीज मंत्र बोला जाता है, जिनको प्रभुपाद जी समझाते हैं यहाँ पे। बीज मंत्र है, बीज मंत्र जिनसे आगे जो बोला जा रहा है, आगे जो प्रार्थना है वो सक्सेसफुल एंड, या क्या बोलते हैं, परिणाम जो है उसका सफलतापूर्वक हमको मिलेगा। तो इस तरीके से आता है, ओम राम ह्रीम ह्रूम, ओम नमो भगवते ऋषिकेशाय सर्वगुण विशेषैर विलक्षितात्मने आकुतिनाम चित्तीनाम चेतसाम विशेषाणाम चाधिपतये षोडशकलाय। अच्छा, ये मत सोचिएगा कि मेरे को एक हफ्ते पहले बोला गया था तो फर्ज बनता है मेरा इसको मेमोराइज करना, और प्रभुपाद बोले हैं इसके तात्पर्य के दूसरे भाग में कि इसको मेमोराइज कर लो, सबको इसको कंठस्थ करना चाहिए, हर एक भक्त को गुरु के निर्देशन में इसको प्रतिदिन रिसाइट करना चाहिए या इसका जप करना चाहिए। तो बोलेंगे अरे हरे कृष्ण महामंत्र का, तो उसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, वो तो करना ही है। और ये मंत्र भी दिए हैं हमको रेसिटेशन करने के लिए। फिर उसमें बोलते हैं छंदोमयाय सर्व छंदोमयाय अन्नमयाय, अन्नमयाय के बाद अमृतमयाय सर्वमयाय सहसे ओजसे बलाय कांताय कामाय नमस्ते उभयत्र भूयात। तो रमा देवी यहां पे प्रार्थना कर रही है हर किसी के लिए, खास तौर पे जो रिसाइटेशन कर रहा है, और पूरी दुनिया के लिए, कि हर के जीवन में ऑस्पिशियसनेस या शुभधा आए। और शुभधा क्या है वो तीसरे भाग में हम चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से ये तीन भाग होंगे आज की चर्चा के। तो पहले भाग में चले जाते हैं अब, प्रार्थनाओं की आवश्यकता। तो इसको लेने से पहले, चर्चा करने से पहले, तात्पर्य का पहला पैराग्राफ जरा ध्यान से सुनिएगा। इस श्लोक में मायामय शब्द की और अधिक भी व्याख्या की गई है। अब बहुत सारे भक्त यहाँ पे होंगे जो कि क्लास में अनइंटरेस्टेड होते होंगे, सो जाते होंगे हर दिन, इसलिए थोड़ा सा रिकैप कर दूं। पिछला श्लोक जो कल हुआ, उस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी मायामय की व्याख्या करते हैं, और वहां पे भी रमा देवी मायामय की, वहां पे सुखदेव गोस्वामी मायामय की व्याख्या करते हैं, तो उसी की और व्याख्या की गई है। मायामय वहां पे जो बोला था वो इस प्रकार से था कि प्रभुपाद बोलते हैं ये जो मायामय है, भगवान मायामय हैं, ये उस तरीके से नहीं जैसे मायावादी बोलते हैं कि भगवान माया के बने हुए हैं। मय मतलब माया से लिप्त, हार्ड मांस का शरीर, उसको भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि आती है, ऐसा नहीं। उसके बिल्कुल विपरीत, भगवान मायामय का मतलब है भगवान तो शुद्ध हैं, पूरी तरीके से स्वराट हैं, पूरी तरीके से शक्तिशाली हैं, पर हम क्षुद्र जीव जो इस जगत में आ गए हैं और ये भौतिक संघर्ष कर रहे हैं यहां पे, उनके प्रति माया के, प्रभुपाद दो अर्थ बताए थे पिछले श्लोक में, कि माया का अर्थ होता है इल्यूजन, मतलब क्या मोह, और माया का अर्थ होता है दया या प्रेम। तो ये जो माया का अर्थ है, मायामय भगवान मतलब भगवान अपने जीवों के प्रति, खासतौर पे जो इस भौतिक संसार में संघर्ष कर रहे हैं, मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, ये जो कर्षण कर रहे हैं प्रकृति के साथ, संघर्ष कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो उनको शांति मिले। इसलिए भगवान बड़े दया के साथ, प्रभुपाद एक जगह पे बोलते हैं उस धाम में भगवान बैठे हैं, लेकिन हमको यहां संघर्ष करता हुआ देख के भगवान वहां रो रहे हैं कि मेरे बेटे क्यों मुझसे बिछड़ के संघर्ष कर रहे हैं। एक तरफ बोलते हैं भगवान कभी रोते नहीं, भगवान आनंद ही रहते हैं, एक तरफ बोलते हैं भगवान रोते भी हैं, तो कैसे, इसी को बोलते हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व। भगवान रोते भी हैं नहीं भी रोते हैं, कैसे वो नहीं समझेगा, जब जाएंगे तो ही समझेगा। ठीक है, तो अभी ज्यादा ज्यादा मस्तिष्क डालने की जरूरत नहीं है, इतना समझ ले भगवान हमारे लिए रोते हैं फिर भी अपने धाम में गोलोक एवं सत्य अखिल आत्म भूतो, वहां पे भगवान अपने परिकरों के साथ खूब आनंद में नाचते गाते खेलते रहते हैं, पर एक तरफ हमारे लिए रोते हैं। इसलिए बार बार भगवान इस जगत में आते हैं हमको आकर्षित करने के लिए, और फिर भी हम मूर्ख नहीं आकर्षित होते। आप तो हो गए होंगे, मैं नहीं होता। ठीक है, तो अभी आगे जाएंगे। इस श्लोक में मायामय शब्द की और अधिक भी व्याख्या की गई है कि किस प्रकार भगवान विभिन्न दिशाओं में अपनी दया का प्रसार करते हैं। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, इसको मैंने अंडरलाइन इसलिए किया है कि आगे जो चर्चा करेंगे इस पे मेन चर्चा करेंगे। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, भगवान की शक्तियां कई प्रकार से समझी जाती हैं। इस श्लोक में उन्हें प्रत्येक वस्तु का, यहां तक कि हमारे देह मन इंद्रियां इंद्रियों कर्म बल शारीरिक शक्ति मानसिक शक्ति तथा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संकल्प का भी, ध्यान से सुनिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, आप हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो हम संकल्प देते हैं उनका भी, यहां तक कि हमारे उनका भी मूल स्रोत कहा गया है। वास्तविकता तो यह है कि प्रत्येक वस्तु में श्री भगवान की शक्ति के दर्शन किए जा सकते हैं। भगवद गीता 7:8 में कहा गया है, रसोहम अप्सु कौन्तेय, जल का स्वाद भी कृष्णमय है। हमारे भरण के लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उनमें क्रियाशील तत्व श्री कृष्ण ही हैं। तो एक छोटा सा चीज जो याद आया, रसोहम अप्सु कौन्तेय, भगवान पानी का स्वाद है। तो प्रभुपाद जब अमेरिका में प्रचार कर रहे थे, डायनेमिक प्रीचर्स को बोलते हैं, प्रभुपाद देखिए सब लोग दारू पीते हैं, सब ड्रग्स लेते हैं, तो प्रभुपाद बोले अगर कोई दारू पीने वाला व्यक्ति बियर बार में बैठ के दारू पीते समय सिर्फ इतना सोच ले ये दारू का स्वाद कौन है, तो वो कृष्णमय हो जाएगा, वो भी धीरे धीरे कृष्ण भक्ति में प्रोग्रेस करेगा। और ये मजाक नहीं है, सच है ये, क्योंकि कृष्ण जब 11वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को दिखाया, भगवान के सामने से छाती से सारे अच्छी चीजें जो हमारे दृष्टिकोण से अच्छी चीजें हैं वो आ रही थी, और सारी बुरी चीजें हमारे दृष्टिकोण से, ध्यान रखिए हमारे भगवान के नहीं, वो भगवान के पीछे से आ रही थी। लेकिन भगवान एब्सोल्यूट हैं, भगवान में द्वंद नहीं है, तो भगवान का पीछे और भगवान का आगे एक सा है। ऋषभदेव महाराज जो भगवान के आंशिक अवतारी हैं, ऋषभदेव महाराज जब विष्ठा करते थे तो 8 मील तक उसके अगरू की खुशबू आती थी, हम करते हैं तो भैया क्या होगा मालूम नहीं। तो भगवान के पीछे से आने वाला मतलब ही गंदा नहीं, सब कुछ अच्छा है, परंतु इंसान के शरीर में अगर हमको मोक्ष प्राप्त करना है कुछ चीजों को त्यागना जरूरी है। पर ये नहीं उनके से घृणा करनी है, मेरे लिए जरूरी है उनको त्याग करना, भगवान के लिए नहीं। ठीक है, सब कुछ भगवान से आया, तो दारू भी भगवान से आई, तो दारू पीने वाला अगर नहीं छोड़ पा रहा तो दारू पीते समय भगवान को अगर प्रार्थना कर ले, भगवान ये मेरे मोक्ष प्राप्त करने के लिए अच्छा नहीं है, उसको भी मोक्ष मिल जाएगा, फिर चाहे दारू पिए धीरे धीरे दारू छूट जाएगी। एनीवेज ये साइड इश्यू। अब मेन चीज पराश्र शक्तिर विविधैव श्रूयते, तो इस पे चर्चा बहुत बहुत समय से बहुत लोग करते आए हैं, मतलब बहुत दार्शनिक लोग विद्वान लोग पूरे संसार में ये एक चीज की चर्चा करते हैं। ये पराश्र शक्तिर का मतलब है भगवान की इतनी सारी शक्तियां हैं जो स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रियाचार, श्लोक का आगे है लास्ट लाइन कि पहले शुरू होता है न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत् शमस चाभी अधिकश्च दृश्यते, कि भगवान के ना तो सम कोई है ना उनसे ऊपर कोई है, सब नीचे हैं, और इसलिए भगवान को न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, इसलिए भगवान को कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है क्योंकि भगवान के अधीनस्थ सब लोग हैं। तो भगवान की इच्छा होने से पहले उनके अधीन जो लोग हैं उनके जो सेवक हैं उसको पूरा कर देते हैं। इतनी सारी शक्तियां हैं भगवान की परास्य शक्तिर, और ये शक्तियां इम्पर्सनल नहीं है, ये शक्तियां व्यक्ति हैं, और वो भगवान की इच्छा को जानते हुए कर देते हैं। जैसे हमारा कंप्यूटर, अगर कोई कंप्यूटर इंजीनियर है, कंप्यूटर का बनाने वाला है, वो कंप्यूटर को जब तक चलाएगा नहीं, कंप्यूटर चलेगा नहीं. क्यों? क्योंकि ये निर्जीव है. लेकिन भगवान की शक्तियां जो हैं, ये कंप्यूटर चलाने वाले की कंप्यूटर शक्ति है, परंतु भगवान की जो शक्तियां हैं वो जीवित हैं, और इसलिए भगवान की मनोइच्छा को जान लेती हैं और कार्य करती हैं. इसलिए भगवान को न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, ना उनको कुछ करना पड़ता, ना उनको कुछ बोलना पड़ता. और ये जो भगवान करते हैं, इसको खोजबीन करने के लिए बहुत दार्शनिक गण हमेशा से सोचते रहे. और क्या सोचते हैं, ये जरा ध्यान से देखिएगा. जब भी हम आसमान को देखते हैं, प्रभुपाद का ही तात्पर्य में समझाते हैं, लेक्चर में भी बोलते हैं, जब भी कोई आसमान को देखता है, कोई भी बच्चा थोड़ा जो बुद्धिमान है, एवरेज से थोड़ा ज्यादा है, आसमान को देख के बहुत सारी बातें ध्यान में आती हैं. और ये जो आसमान है और आसमान के साथ जो नैसर्गिक आपदाएं होती हैं, जैसे भूचाल आया, भूकंप आया, आपका क्या बोलते हैं, तूफान आया, ये सब देख के बहुत सारे दार्शनिक गण, यहाँ पे देख रहे हैं आप, शुरुआत से कॉपरनिकस से नीचे तक, इनकी हम चर्चा करेंगे आज. ये दार्शनिक गणों ने चाहे भारत के हों चाहे विदेश के हों, जिन लोगों ने शास्त्र नहीं पढ़े, वो इसको देख के बहुत सारे विचार आते हैं उनको. और विचार क्या क्या होते हैं, बड़े सुंदर विचार होते हैं. ये विचार क्या होते हैं, ये विचार नॉर्मल नहीं होते, ये विचार नॉर्मल से ऊपर होते हैं. पहला विचार, सृष्टि की उत्पत्ति का स्रोत क्या है. ये अभी मैं फिर बोल रहा हूं जो एवरेज से ऊपर है. ज्यादातर लोग हर दिन की जीवन को जीते हैं, जैसे आलू गोभी जीता है ना, उगता है, शेल्फ में आता है, मार्केट में जाता है, मार्केट से कोई खरीद के लाता है, शेल्फ में रख देता है, अगर उसको खाना नहीं पकाया तो वहीं पे सड़ेगा, वो सोचता नहीं कुछ. तो ज्यादातर आम जनता जो है, भागवतम के दूसरे स्कंद में भी बोलते हैं, आम जनता एक जानवर जैसा है. और वो जानवर कैसा होता है, मालिक लेके आया, मालिक ने मुर्गी को खिलाता है, मालिक उसकी गर्दन काटने के लिए, लेकिन वो सोचता नहीं कि मेरी गर्दन काट देगा, क्वेश्चन नहीं करता इस बात को. वैसे आम जनता जो होता है, उसको पता नहीं होता मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है. परंतु कुछ बुद्धिजीवी जो पिछले जन्मों से बहुत कुछ किए हैं, वो बुद्धिजीवियों के दिमाग में ये प्रश्न आते हैं, क्या सृष्टि की उत्पत्ति का स्रोत क्या है. दूसरा, और ये लोग ज्यादातर इन चीजों में इंटरेस्टेड नहीं होते, खाना कहां पर मिलेगा, सेक्स कहां पर मिलेगा. आम जनता ज्यादातर इन दो चीजों में इंटरेस्टेड होता है, खाना कहां मिलेगा, रोज का सुबह उठा, जैसे चिड़िया होती है ना, प्रभु पहले स्कंद में बोलते हैं, हर चिड़ियाएं जो होती हैं सुबह सुबह ची 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 करके क्या बातें करती हैं, दो ही चीजें बातें करती हैं, खाना कहां मिलेगा, कहां जाएं, घोंसले में लेके आए. और दूसरा, खाने के बाद क्या होता है, शक्ति आती है, सेक्स कहां करेंगे, टेंशन इतना ही है. और यही जीवन है तो कोई ये जानवर जीव का जीवन या एक क्या बोलते हैं सब्जी का जीवन है. परंतु जो बुद्धिजीवी हैं वो सोचते हैं सृष्टि का कारण क्या है, ये क्यों बनाई गई. तीसरा, सृष्टि का लक्ष्य क्या है, ये सृष्टि में हमको डाला तो ये लक्ष्य क्या है, ये सृष्टि में जीने से क्या फायदा, क्यों ना आत्महत्या कर ली जाए. चौथा प्रश्न, हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, सृष्टि का लक्ष्य क्या है और हमारे जीवन का. इतना कुछ बनाया, जब आकाश को रात को देखते हैं हम तो तारे चांद इतने बड़े बड़े चीजें, सूरज हमारी पृथ्वी से 13,000 गुना बड़ा सूरज. किसी साइंटिस्ट ने आज तक नहीं बताया कि आज से 1,000 साल पहले सूरज ज्यादा बड़ा जलता था और अब कम जलता है, अब छोटा हो गया, उसका ईंधन खत्म हो रहा है, ऐसा कोई नहीं बताता है. तो इतनी बड़ी जब कल्पना देखता है तो मनुष्य सोचता है ये सारे प्रश्न. और यही प्रश्न ऋग्वेद के इस श्लोक में, जो मेरे पीछे मत बोलिएगा, मैं बोलूंगा, ना सदासीन नो सदासीत तदानीम नासीद रजो नो व्योमा परोयत किमावरी वह कुहकस्य शर्म न अंभः गहनम किमासीद गहनम गभीरम. आप लोगों ने कितने ने ये देखा था, भारत एक खोज, एक सीरियल आता था, जवाहरलाल नेहरू की एक बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे आधारित, तो मैं बचपन में देखता था, अभी मैंने उसको जस्ट तब याद किया था, अभी मैंने उसको इस लेक्चर के लिए रिवाइज किया. ये श्लोक उससे पहले टाइटल सॉन्ग में बोलते हैं. ये श्लोक में क्या है, ये ऋग्वेद का श्लोक है. और ये जो ऋग्वेद का ये जो मंत्र है नासदीय सुक्तम, इसमें 7 श्लोक हैं. और ये प्रश्न पूछते हैं, क्या पूछते हैं, सृष्टि से पहले कुछ नहीं था, ये ट्यून है उसकी, और ये उसका अनुवाद भी है, सृष्टि से पहले कुछ नहीं था, सत भी नहीं ना सदी, ना सत भी नहीं, असत भी नहीं था, आकाश भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, छिपा था क्या, किमावरी वह, मतलब छिपा था क्या, कहां, किसने ढका था, उस पल तो अगम अटल जल भी नहीं था। ये प्रश्न दार्शनिकों को आने से पहले हमारे वेदों में पहले ही लिख दिए, और इसी ऋग्वेद में आगे चल के हिरण्यगर्भ स्तोत्र आता है, उसके बाद में पुरुष सूक्तम आता है, और पुरुष सूक्तम में इसके उत्तर भी दे दिए, और बहुत अच्छे उत्तर दिए, आज उसी की हम चर्चा करेंगे। इतने अच्छे उत्तर हैं जो आज का जो साइंस है, जिसकी अवधि जो है करीब करीब 1500 साल की है, टोलेमी से लेके नीचे तक, और आज का लेटेस्ट जो साइंटिफिक डिस्कवरी की है ब्रह्मांड क्या है, वो लास्ट दिया है स्टीफन हॉकिंग ने, जो लास्ट फोटो है नीचे। तो इन लोगों ने क्या बताया, और वो बिल्कुल वैदिक शास्त्रों के बहुत करीब आ रहा है, कुछ समय में शायद वैदिक शास्त्रों के थोड़े बहुत चीजों को समझ जाएं, पर फिर भी ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो अब उससे पहले थोड़ा सा इसको लेंगे, फिलॉसफी साइंस ऑफ साइंसेस। आप देखेंगे ये जो चित्र जिनकी फोटोएं हैं, ये सारी फोटोएं नीचे को छोड़ के, स्टीफन हॉकिंग को छोड़ के, आइंस्टीन से ऊपर न्यूटन गैलीलियो वगैरह, इनके समय पे साइंस स्कूल कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता था, ना तो यूरोप में ना इंडिया में। साइंस जैसा हम देख रहे हैं वैसा नहीं पढ़ाया जाता था। क्या पढ़ते थे ये लोग? फिलॉसफी पढ़ते थे, तत्व दर्शन पढ़ते थे, और ये तत्व दर्शन में ये चीजें थी, और बहुत सारे उन लोगों ने तात्विक चीजें सुनी। एक फिलॉसफी थी ग्रीक फिलॉसफी, उसमें बोलते हैं ये सृष्टि के शुरुआत में एक व्यक्ति था जिसका नाम था बुम्बा, ठीक है, और वो बुम्बा क्या किया, बुम्बा ऐसे बैठता था और वो खांसा, जब उसको पहली खांसी आई तो क्या निकला, सूरज निकला, फिर उसको और खांसी आई तो खांसी आई तो क्या निकला, चांद निकला, फिर और खांसी आई तो मनुष्य निकला, और खांसी आई तो जानवर निकले, ऐसे खांसते गया। तो अब आप सोचिए कोई दार्शनिक व्यक्ति है, जो सोचने वाला व्यक्ति है, ऐसी फिलॉसफी को सुनेगा, बोलेगा क्या पागल बने। ऐसे ही बाकी बाइबल के प्रीस्ट लोगों ने वगैरह ने कुछ कुछ चीजें सुनाई जो कि लॉजिकल नहीं लगी, और ऐसे ही भारत में भी कुछ पंडितों ने आधा अधूरा पढ़ लिया, जैसे वो श्लोक जो अभी पिछला ऋग्वेद का श्लोक पढ़ने के बाद जो आगे सूक्त पुरुष सूक्त को उन्होंने देखा, ऋग्वेद का ये श्लोक तो इंपॉर्टेंट है, पुरुष सूक्त इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो उनके क्वेश्चन ही रह गए। और वहां पे भारत एक खोज में वो पूछता है, क्या पूछता है, वो बोलता है सृष्टि से पहले नहीं, सृष्टि का कौन है रचेता, सृष्टि का कौन है कर्ता, कर्ता है वा अकर्ता। ध्यान से सुनिएगा, ये देखिए क्या स्पेकुलेशन है, जबकि आप वो नासदीय स्तोत्रम को पढ़ेंगे, आप सब मेरे साथ में है ना, मैं क्या बोल रहा हूं, नासदीय स्तोत्रम के अगर 7 श्लोकों को आप पढ़ेंगे, ये वाला उसका ट्रांसलेशन ही नहीं है। लेकिन उसने क्या किया, पहला श्लोक उठाया और फिर अपना दिमाग लगा दिया, आगे पढ़ने से बजाय, पढ़ने के बजाय अपना दिमाग लगा दिया, और क्या बोलता है, सृष्टि का कौन है कर्ता, कर्ता है वा अकर्ता, अकर्ता मतलब बनाता है और फिर अकर्ता है, ऊंचे आकाश में रहता, सदा अध्यक्ष बना रहता, वही सब कुछ है जानता या नहीं भी जानता। अब ये ऐड करने की क्या जरूरत है, वो सब कुछ जानता ही ठीक है, या नहीं भी जानता है, किसी को नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, नहीं है पता, नहीं है पता। ये बोलने की क्या जरूरत है, ये अपना दिमाग लगा दिया। पुरुष सूक्त पढ़ो और एकदम डिटेल में, हम आगे चर्चा करेंगे, एकदम डिटेल में भागवतम पढ़ो, एकदम डिटेल में बना दिया, एकदम एम्फैटिकली बोला वो पुरुष सब कुछ जानता। और यहां पे भी कई साधु हैं जो जानते, लेकिन वो साधु पब्लिक में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि पब्लिक उनका टाइम वेस्ट करते। बात समझ रहे हैं? जैसे आपने ये 5वें स्कंद के शुरुआत में पढ़ा कि भरत महाराज जब जड़ भरत के रूप में थे, रहुगण को कुछ नहीं बोले, पब्लिक में घूमते गए, अपने घर वालों को भी नहीं बोले, प्रचार किए ही नहीं, चुप रहे। जब उन्होंने देखा ये रहुगण मिस पार्क है और ये जा रहा है तीर्थ यात्रा के लिए, अब अगर इसको हिट किया मैंने, और वो परमात्मा ने उनको इंस्पायर किया, तो ये समझेगा। और आप देखिए क्या एटीट्यूड था, जैसे ही भरत महाराज ने बोलना शुरू किया, रहुगण नीचे उतरे, दंडवत किया और बोले आप तो बहुत ज्ञानी है, बताइए तो वो ये देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है अगर कोई छिछोरे तरीके से, जैसे अभी मैं स्टॉल पे सेवा करता हूं, तो शाम को परसों नर्सों के दिन तीन लड़के आए। एक लड़का बुक खरीद रहा था, बहुत जिज्ञासु था, भगवद्गीता खरीदी, कृष्णा बुक खरीदी, उसको थोड़ा सा बताया खरीद ली, तो खरीदने के बाद उसको बहुत अच्छा लगा। दूसरे दो थे, एक थोड़ा सा नास्तिक था, तीसरा पूरा ही नास्तिक था। वो तीसरा जो है वो आया, ठीक है, और वो मेरे को बोला, मेरा एटीट्यूड देखा, बोला महाराज जी आप कहाँ से, तो बोला मैं बोला यहीं का हूँ, मतलब उन लोगों का बोलना विदेशी हो क्या, विदेशी हो तो हमारा भी टिकट लगाओ, मैं यहीं का हूँ, ठीक है यहीं क्यों, तो महाराज जी आपने किताबें पढ़ी क्या, बोला हाँ पढ़ी, गोटी थोड़ी खेली, तो बोला अच्छा तो मेरे को बताओ सीधा क्या पूछ रहा है। अभी देखिए क्वेश्चन, ये पूछा क्वेश्चन, मतलब वो बिल्कुल सीरियस नहीं है। क्या पूछता है, ए, ए, राधा रानी और कृष्ण कौन है, और मुंह ऐसा ही था, राधा रानी और कृष्ण कौन है, ए, राधा रानी क्या विवाह हुआ था, मैं बोला चुप रहो ना यार, मैं आप जवाब दे सकते हो क्या, इसमें दिया है क्या, मैं बोला हाँ मैं दे सकता हूं पर अभी नहीं दूंगा, तो बोला नहीं क्यों नहीं दोगे, मैं बोला क्योंकि आप अभी पूछ रहे हो, अगर आपको टाइम होगा टाइम निकाल के मेरा टाइम लेके आओ, घंटों बैठो, ये नहीं बस पक गया मैं तो आधा घंटा हो गया महाराज जी पक गया मैं तो जा रहा हूं। खेत की मूली समझा है, इतनी बड़ी सृष्टिकर्ता को समझना, सृष्टि को अभी तक नहीं समझ पाए, अभी तक साइंटिस्ट लोग समुद्र का बोलते हैं कि एक बार डिस्कवरी चैनल पर सुना था, समुद्र का सिर्फ 5% जान पाए, वो समुद्र को बनाने वाले को आप बस 5 मिनट में समझ जाना चाहते हो, आधा घंटा देंगे महाराज जी टाइम लगा के, तो तेरा गुलाम है क्या, मत आ भाग इधर से, टाइम पास नहीं करना चाहिए। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये, जो प्रश्न है ये प्रश्न गंभीर प्रश्न है, और इन प्रश्नों को जो उत्तर देने के लिए इन लोगों ने, हालांकि ये वैज्ञानिक विदेशी हैं पर इन लोगों ने जीवन काल दिया, परंतु दुर्भाग्यवश भारत में से कोई ऐसे, भारत में आज स्कूल कॉलेज नहीं रहे, नंद ने जो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं 12वें स्कंद में परीक्षित महाराज के जन्म लेने के 1150 साल बाद नंद आएगा, नंद राजा भारत में, और वो नंद राजा सारी वैदिक शिक्षा प्रणाली को खत्म कर देगा, और उसने ये कली लेके आया, उसके बाद शिक्षा का डिसेमिनेशन, शिक्षा का क्या बोलते हैं प्रसार प्रचार होना, ये वैदिक शिक्षा का प्रसार प्रचार होना भारत से बंद हो गया। जब बंद हो गया तो ये दुर्भाग्यवश ये जो बुद्धिजीवी थे इनको डायरेक्शन नहीं मिला, इनको डायरेक्शन वैसा ही मिला, वो बुम्बा, वो खांसता है तो ब्रह्मा निकला, खांसता है तो सूरज निकला, खांसा वो, अरे ऐसे एक ऐसा लॉजिक होता है कि एक बुम्बा था जिसने खांसा तो सूरज निकला, खांसा तो, अरे कुछ तो समझाओ यार। तो ये जो समझाने की बात है ये इनको जब नहीं मिली तो इन लोगों ने बहुत सारी फिलॉसफी बनाई, और ये प्रभुपाद बोलते हैं फिलॉसफी इज साइंस ऑफ साइंस। अब यहां पे देखेंगे हम, ये थोड़ा सा लोगों को लगता है आज जो पढ़ाया जाता है इंजीनियरिंग वगैरह ये साइंस है, हम साइंस के स्टूडेंट हैं, ना, साइंस और टेक्नोलॉजी में फर्क है। टेक्नोलॉजी मतलब शिल्पकारी, इंजीनियर मतलब शिल्पकार, और शिल्पकार मतलब एक चीज को बार बार करने वाला व्यक्ति को शिल्पकार बोलते हैं, और शिल्पकार को वैदिक रचना में उसको शूद्र में डाला जाता है, एक चीज को बार बार करता है। प्रभुपाद बोलते हैं एक बार कार बनाई, कार पोल्यूशन कर रही है, बार बार कार क्यों बना रहे हो तुम, मतलब तुम शूद्र हो, थोड़ा सोचो तो, बस कार के थोड़े डिजाइन चेंज कर दिए, थोड़ा मखमल का कर दिया, पहले ऐसे टाइट था फिर रिलैक्स कर दिया, अरे कार ही तो है, पोल्यूशन ही तो कर रही है मेरे भाई, ऐसी कार बना दो जो पानी से चले पोल्यूशन ना करे, नहीं वो तो नहीं करवाना पड़े, तो इनको शूद्र बोलते हैं। और हम क्या समझे बैठे हैं, ये जो टेक्नोलॉजी वाले हैं वो क्या है, साइंस वाले हैं, ये साइंस स्टूडेंट नहीं है, साइंस स्टूडेंट ये लोग रहे। जब आइंस्टीन को बोला, आइंस्टीन ने एटम बॉम्ब की खोज कर ली थी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने वाला था, द्वितीय महाविश्व युद्ध, तब आइंस्टीन को पकड़ के अमेरिका ले जाना चाहता था, आइंस्टीन भाग गया, जर्मनी से भी भाग गया, अमेरिका से भी भागने की कोशिश की, आइंस्टीन ने वो दिया नहीं, क्यों, क्योंकि वो इनके लोगों के हाथ में जाएगा, ये विस्फोट करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, तबाही करेंगे। तो ये बुद्धिजीवी लोगों को जब भारत से कोई ज्ञान नहीं मिला, मार्गदर्शन नहीं मिला, तो वो लोग इधर उधर चले गए। लेकिन ये है साइंस। अब थोड़ा सा परिभाषा, साइंस की परिभाषा है। ये क्या करता है, सृष्टि आदि की जिज्ञासा करता है। जो साइंटिस्ट होते हैं उस सृष्टि आदि, जो हमने पहले प्रश्न लिए, उसकी जिज्ञासा करते हैं। और टेक्नोलॉजी हमको सुख सुविधाएं बनाता है। अभी गर्मी हो गई तो एसी लगाओ, ठंडा करो, साइंटिस्ट इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते। ठीक है, गर्मी हो गई तो मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, बर्दाश्त करेंगे, लेकिन मेन फोकस क्या है, इसकी चर्चा करना। ठीक है, कोई लगा देगा, डोनेशन देके लगा देगा एसी तो ले लेंगे, लेकिन पीछे नहीं भागेंगे एसी बनाने के और एसी के लिए डोनेशन मांगने के। ठीक है, चल रहा है, लेकिन किसी ने, भगवान ने भेजा किसी को, भैया ले लगा, तो मैं लगाऊंगा भी नहीं, तू ही लगा के दे। और यही करते आए ये सनातन गोस्वामी का मंदिर, बोलते हैं मदन मोहन मंदिर, लेकिन मदन मोहन मंदिर सनातन गोस्वामी ने कुछ नहीं बनाया। सनातन गोस्वामी तो भगवान को बोले, भगवान बोले ए, मेरे लिए एक मंदिर तो बना दे। भगवान बोले भाई तूने मेरे को घर छुड़वाया, अभी बाबा जी बनाया, अब मंदिर बनवाएगा, फिर बोलेगा मेरे लिए ला, फिर मेरे को शादी करनी पड़ेगी, बाबा जी बना गया अभी शादी करो, पागल है क्या? भगवान को चुप कर दिया। फिर भगवान ने अपना अरेंजमेंट किया, और नाम किसको दिया, जिसने कुछ नहीं किया। एक कपूर ने बनाया था, नाम किसका है, कपूर को कोई नहीं जानता, किसने बनाया, सनातन गोस्वामी। ऐसे प्रभुपाद ने मंदिर एक बनाया क्या, एक नहीं बनाया, एक फोन नहीं किया, एक ईंट की बोरी, एक ईंट नहीं खरीदी, एक सीमेंट की बोरी नहीं खरीदी, लेकिन नाम किसका, प्रभुपाद स्वामी के मंदिर। तो ये भगवान क्रेडिट देते हैं, किसको देते हैं, जो मेन रिसर्च में लगाए, जो फालतू की चीजों में नहीं पढ़ा, जो टेक्नोलॉजी में नहीं पढ़ा, साइंस में पढ़ाए। अब आधुनिक, अब थोड़ा सा और 5 मिनट इसको चर्चा करेंगे, जल्दी जल्दी जाऊंगा। अब जरा ध्यान से रखिएगा, मेरे साथ में भूमिका बना दिया, इसको समझाना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो इसको मैंने यहां पे दिया, टोलेमी, कॉपरनिकस, गैलीलियो और स्टीफन हॉकिंग। आधुनिक विज्ञान पिछले 1500 साल में, करीब करीब 1 से 1500 साल में कहां तक आया है, साइंस में, टेक्नोलॉजी में नहीं। फिर से, ठीक है, हवाई जहाज किस स्पीड से जाता है, कितने बॉम्ब कौन सा कंट्री किस पे डाल देता है और तबाही करता है और साइंस को खत्म करता है, इस पे नहीं। ठीक है, किस पे, साइंस पे, ओरिजिन के प्रश्न पे। तो टोलेमी जो सबसे पहली फोटो देख रहे हैं, उसने ये बताया था, उसने देखा, उसने सोचा, उसको शास्त्रों से तो कुछ नहीं मिला, भारत से कुछ नहीं मिला, तो उसने अपने दिमाग से सोचा कि सृष्टि का सेंटर होना चाहिए कौन, पृथ्वी। क्यों, मानव को हमेशा से, मोबाइल को थोड़ा साइलेंट रखिए कृपा करके, मानव को हमेशा से घमंड रहा है कि हम मानव सबसे बड़े, और मानव में कैसा, मेरा देश सबसे बड़ा, मेरे देश में मेरी जाति सबसे बड़ी, मेरी जाति में मेरा घर सबसे बड़ा, नहीं मेरी लोकैलिटी सबसे बड़ी, और सबसे अच्छा कौन सा, मेरा घर, और मेरे घर में सबसे अच्छा कौन, मैं तो कौन है सबसे अच्छा मैं। ये मानव हमेशा सिद्ध करने की कोशिश करते रहा, और इसीलिए अंग्रेज यहां पे आए और अंग्रेजों ने भारत को नाम दिया, भारत अंग्रेजों का, गोरों का, इंडिया इज दी, इज द वेट ऑफ, भूल गया एग्जैक्ट स्टेटमेंट भूल रहा हूं, भारत जो है अंग्रेजों के लिए एक बहुत, अंग्रेजों की जिम्मेदारी बनती है भारत को सुधारना। ये उनको लगा और उन्होंने पूरी हिस्ट्री को चेंज किया, खैर उसमें भी नहीं जाऊंगा। तो ये पहले सोचते थे कि धरती फ्लैट है, टोलेमी से पहले सोचते थे धरती फ्लैट है, भारत में कभी नहीं सोचते थे। भागवतम में आज से 5000 साल पहले, जब ये लोग नंगे पुंगे घूमते थे, ये यूरोपियन लोग, तब भारत में बोल दिया 5वें स्कंद में, भूगोल, पृथ्वी गोल है, और सब कुछ बता दिया बाकी भी, लेकिन ये फ्लैट सोचते हैं। टोलेमी ने पहले बार बोला नहीं नहीं फ्लैट नहीं है, गोल है, और लेकिन फिर भी क्या है, पृथ्वी सेंटर है, पूरा ब्रह्मांड, सूरज वगैरह सब पृथ्वी के बाजू में घूमते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आया गैलीलियो और कॉपरनिकस ने, बोला नहीं नहीं हेलियोसेंट्रिक, मतलब सूरज बीच में है और हम सब घूमते हैं, लेकिन फिर भी सूरज तो अपना है ना, वो देखिए बाकी तारे जो हैं वो भी सूरज हैं, लेकिन वो सारे तारे, वो सूरज, वो इस सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो क्या मानव जाति स्पेशल। फिर अब ये हो गया, अब लास्ट जो अभी स्टीफन हॉकिंग की मृत्यु अभी अभी हुई मार्च 2018 में, 1942 का ये स्टीफन हॉकिंग का बर्थ है, और ये स्टीफन हॉकिंग सबसे स्मार्ट साइंटिस्ट आज तक आइंस्टीन के बाद हुआ। ठीक है, इसकी हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा स्टीफन हॉकिंग की, लेकिन इसने दो बहुत अमेजिंग थियोरी दी। अभी ध्यान रखिए, ये सारी थियोरी हैं, किसी ने पृथ्वी से जाके ऊपर देखा नहीं एक्चुअली कि सन सूरज कहां घूम रहा है, लेकिन सोचे दिमाग से, और सिर्फ स्पेकुलेशन है, और वो खुद बोलते हैं स्पेकुलेशन है। आप यूट्यूब में इन लोगों के इंटरव्यू पढ़ेंगे सुनेंगे, स्पेकुलेशन बोलते हैं। स्पेकुलेशन मतलब मन से सोची हुई मानसिक परिकल्पना। जब कल्पना ही करनी है तो शास्त्रों से कर लो यार लेकिन नहीं करेंगे, वो अपनी परिकल्पना करेंगे। खैर, तो पहली परिकल्पना है, पहली नहीं बहुत सारी मिला के ये आती है, बलून थ्योरी। ये बोलता है कि बहुत सारे ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, लेकिन ये ब्रह्मांड एक समय पे सिंगुलैरिटी है। अब इसको जरा ध्यान से समझिएगा, मैं पूरा तो विश्लेषण नहीं करूंगा। एक समय पे ये जितना भी हम आसमान में धरती पे इतना सब कुछ देख रहे हैं, ये एक समय पे कॉन्सेंट्रेटेड था एक जगह पे, और ऐसे था कि उसको समझाया नहीं जा सकता। और वहां से क्या हुआ, वो विस्फोट हुआ, जिसको बिग बैंग बोलते हैं, तनाम। और वो विस्फोट होके, यहां पे आप देख रहे हैं, वो विस्फोट होके ये बड़ा हो रहा है, और बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। और जब वो देखते हैं, ये सारे चांद तारे सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, गैलेक्सी दूर जा रही है, एक्चुअली गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही है, उसको रेड शिफ्ट बोलते हैं। तो अब जाने के बाद एक समय पे, इसको बोलते हैं बलून थ्योरी। बलून मतलब आप देखेंगे फुग्गे को, गुब्बारे को आप फुगाइए, फुगेगा फुगेगा तो उसके ऊपर जो डॉट्स बने होंगे मार्क, वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, और फिर थोड़े समय में उसकी हवा छोड़ दीजिए, वापस एक जगह पे आ जाएंगे। ये ऐसा ही बोलते हैं ये ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड बहुत सारी गैलेक्सियों का बना है, और ये बढ़ता बढ़ता है, और एक समय पे जाके फिर वो सिंगुलैरिटी में चले जाता है। लेकिन अब ये सिंगुलैरिटी जो है, वो जो पॉइंट है, वो क्या है, स्टीफन हॉकिंग बोलता है हम नहीं समझा सकते। उस समय जब सिंगुलैरिटी होता है, ये ध्यान से सुनिएगा, ना तो उस समय काल है और ना स्पेस है, ना जगह है ना काल है। तो क्वेश्चन स्टीफन हॉकिंग ने ही पूछा, अगर स्पेस नहीं है तो ये विस्फोट होता कहां है, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, स्पेस होना जरूरी है कुछ होने के लिए, अगर स्पेस ही नहीं है विस्फोट कहां होगा। मैं नहीं समझा सकता, अचिंत भेदा भेद बोलो ना यार नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे प्रभुपाद, आठवां स्कंद वहां पे चल रहा है, तो वहां पे गजेंद्र मोक्ष की प्रार्थनाओं में एक जगह पे प्रभुपाद लिखते हैं। क्यों वो लोग इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि भगवान ने वो एक्सप्लोजन किया, और भगवान के रोम छिद्रों में से वो एक्सप्लोजन होता है। अब ध्यान समझ में आ रहा है, आगे जाएंगे। महाविष्णु के रोम छिद्रों में से ठीक इसी प्रकार से, इस पे वापस आऊंगा मैं थोड़ा सा, हाँ ये जो फोटो देख रहे हैं, भगवान के रोम छिद्रों में से, ये पुरुष सूक्त में भी दिया है, श्रीमद भागवतम में भी दिया है, चैतन्य चरितामृत में भी, भगवान महाविष्णु के रोम छिद्रों में से एक बीज के रूप में ये ब्रह्मांड निकलते हैं, और फिर वो बड़े होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, और एक समय पे वो फिर श्वास अंदर लेते हैं, फिर वो छोटे होते होते अंदर चले जाते हैं। तो ये जो सिंगुलैरिटी पॉइंट है, वो कौन सा पॉइंट है, जब रोम छिद्रों में अंदर जाते हैं। तो वो जो विस्फोट है कहां से हुआ, भगवान ने किया। अब इसको क्यों नहीं समझ सकते, वहां पे प्रभुपाद बोलते हैं आठवें स्कंद में कि क्योंकि वो लोग दे आर कंटेमिनेटेड बाय द पोल्यूशन ऑफ फ्रूट रिएक्शंस ऑफ फ्रूटिव एक्टिविटीज, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म की बहुत सारे बुरे अच्छे कर्म किए हैं, ये कर्मों का बंधन छूटेगा ऐसे नहीं जब तक उनको पार ना कर लें, उनको भोग ना लें, इसलिए वो नहीं समझ पाते। क्योंकि अगर वो समझ जाएंगे तो कर्मों का बंधन छूट जाएगा, वो भगवतधाम चले जाएंगे। लेकिन उनका कर्मों के बंधन को, जितना कुछ किया उन्होंने, जितने भी कोई पाप कर्म किए, पुण्य कर्म किए, उनको भोगना जरूरी है। तो ये इसलिए ये लोग इसको नहीं एक्सेप्ट कर पाते। अच्छा, अब निष्कर्ष जो भी हो जाए, हाँ ये लास्ट फोटो, नीचे वाली फोटो, ये स्टीफन हॉकिंग ने कंप्यूटर में बनाया है। यहां पे दिखाते हैं कि हमारी ये गैलेक्सी है, ऐसी गैलेक्सी बहुत सारी हैं, और उसमें एक छोटा सा बिंदु, वहां पे जो बिंदु दिखा रहे हैं एरो मार्क, वो हमारा सूरज है, और सूरज के बाजू में घूमती हुई पृथ्वी है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है इससे, चाहे साइंस से ले ले, आज के मॉडर्न साइंस, या वैदिक साइंस से, हम बहुत छोटे हैं, और ये छोटा सा जीव अपनी परिकल्पना से अपने मन को दौड़ा के कभी ना तो ओरिजिन को समझ सकता, ना सृष्टि के कारण को समझ सकता, ना सृष्टि के रचयिता को समझ सकता। और इसी को श्रीमद् भागवतम में बोला है, इसको तो आपने सबने देखा ही होगा, तो ये इसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे जो मैंने कर दी। ये महाविष्णु है, महाविष्णु से सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, और ये महाविष्णु केवल भगवान श्री कृष्ण का एक अंश के अंश के अंश हैं, ठीक है। और यहां पे पुरुष सूक्त का चौथा और पांचवा सूक्त जो है पांचवा, चौथा और पांचवा श्लोक, वो बताता है कि ये जो आध्यात्मिक जगत है, भगवान का वैकुंठ जगत, वो वैकुंठ जगत तीन पाद विभूति है, और ये जो भौतिक जगत है केवल एक पाद विभूति है, मतलब 1/4 और 3/4। तो इतना विशाल को हम छोटे से क्षुद्र जीव क्या जान सकते हैं? मैं पूछ रहा हूं, क्या जान सकते हैं? कभी नहीं जान सकते। तो अब जब नहीं जान सकते तो करना क्या है? तो निष्कर्ष में, चाहे आधुनिक नास्तिकवाद वाले विज्ञान द्वारा, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, चाहे आधुनिक नास्तिकवाद वाले विज्ञान द्वारा देखें या वैदिक शास्त्रों द्वारा, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस ही निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि सृष्टि का रचयिता बहुत महान है और हम शक्तिहीन शूद्र हैं। और इसलिए तो फिर करना क्या चाहिए? अब दो मार्ग हैं, अवरोह पंथ लें या आरोह पंथ लें। अवरोह पंथ मतलब क्या है? अवतार। अवरोह अवतार से आया, अवतार मतलब ऊपर से नीचे आना, संस्कृत अवतार का अर्थ है ऊपर से नीचे आना। तो क्या हम भगवान की बातें जो शास्त्रों में दी हैं उनको स्वीकार करके उस निष्कर्ष पे चले जाएं जो हम बुद्धि लगा के भी आने की कोशिश करेंगे, या आरोह पंथा लें? आरोह मतलब अपनी कोशिश से ऊपर जाना। कौन से को लें? साफ हमारे क्या बोलते हैं, ऑप्शन हमारे पास है क्या करना है, चाहे अवरोह पंथा लें या आरोह पंथा। लेकिन अगर कोई गाइडेंस नहीं होगी, कोई विद्वान लोग नहीं होंगे जिनको ये परिकल्पना पता है, तो फोर्सफुली बुद्धिमान जीव क्या लेंगे? आरोह पंथा लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई बताने वाला ही नहीं है, तो अवरोह पंथा लें कैसे? अच्छा, अब भगवान की महानता का, अब ये तो हो गया, सेटल हो गया, प्रूव कर दिया कि परास्य शक्तिर विविधैः शूयते, भगवान इतने महान है कि जिनकी शरण लेना हमको जरूरी है। अब भगवान की महानता का भागवतम में एक उल्लेख बहुत ही ज्यादा किया है, बहुत ही पराकाष्ठा के रूप में किया है, वो क्या है? ये श्लोक बोलता है, भगवान अपनी स्तुति खुद गा रहे हैं अनंत शेष के रूप में। नान्तम विदाम्य हम अमी मुनु योग रजास्ते माया बलस्य पुरुषस्य कुतो वराये गायन गुणान दश शतानन आदि देव शेषो धुनापि समवस्यति नास्य पारम। ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं नारद मुनि को, बोलते हैं नान्तम विदाम्य हम अमी मुनु योग रजास्ते। हे नारद मुनि, ना तो मैं जान पाया वो भगवान को, ना तुम जान पाए, ना तुम्हारे तुमसे पहले आने वाले कोई मुनिगण, चतुर्कुमार वगैरह जान पाए, कोई नहीं जाना इनको। और यहां तक कि वही भगवान गायन गुणान दश शतानन, वही भगवान जब हजारों हजारों मुखों से अनंत शेष के रूप में अपना गुणगान करते हैं, उसकी ओर ना छोड़ पाते हैं। वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो खुद वो नहीं जानते। और भागवतम का दशम स्कंद में भी बोलते हैं, भगवान इतने सुंदर हैं कि माँ देव की सारे पिलर्स को, शीशों को कपड़ा डाल के रखती थी द्वारका में, कि श्री कृष्ण देख ना लें अपने आप को। और एक बार उन्होंने जब अपने आप को पानी में देख लिया मुंह धोते हुए, तो बेहोश हो गए, बोले ये कौन है इतना सुंदर, वहां पे बेहोश हो जाते हैं। तो इतने सुंदर है भगवान, इतने महान है कि वो नहीं समझ पाते वो कितने महान है। अब इसको ये नहीं समझना कि वो नहीं समझ पाते, समझ लेते हैं लेकिन फिर भी नहीं समझ पाते, अचिंत्य भेदाभेद तत्व। अब नास्तिकवाद का परिणाम, ये जो नास्तिकवाद विज्ञान है इसके परिणाम क्या है? बहुत खतरनाक परिणाम है। एक परिणाम यह है कि हम अनाथ हो जाते हैं। अगर मान लो नास्तिक है कोई व्यक्ति, नहीं मानने को तैयार कि ऐसा एक व्यक्ति है जो हमारी रक्षा करता है, जब बहुत कड़ी समस्याएं आती हैं जीवन में, जो लोग उम्र बिता चुके हैं, बच्चे नहीं है, यहां पर ज्यादातर बच्चे नहीं है, ऐसी समस्याएं आती हैं जीवन में जहां पर कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। प्रहलाद महाराज तक बोलते हैं, बालस्य नेह शरणम पितरौ नरसिम्हा नार्तस्य चागदम उदन्वति मज्जतोनौ तप्तस्य तत्प्रतिविधिर यह इहां जसेष्टस तावद विभूतनु भृताम त्वद उपेक्षितानाम। कि हे भगवान, अगर आपने उपेक्षा कर दी किसी की, तो उसका चाहे उसके पास सबसे अच्छी मेडिसिन हो, बालस्य नेह शरणम, वो बाल अगर छोटा बालक है उसके पास सबसे अच्छे माँ बाप हो, बहुत अमीर माँ बाप हो, उसके पास मेडिसिन हो, उसके पास नाव हो, अगर वो सैर करने जा रहा है समुद्र में, बहुत अच्छी नाव हो, लेकिन अगर उसको मरना है डूब के या बीमारी से, उसकी दवा काम नहीं करेगी, डॉक्टर काम नहीं करेंगे, पैसा काम नहीं करेगा, उसके माँ बाप काम नहीं करेंगे, उसके राजा काम नहीं करेंगे, उसके राजमंत्री काम नहीं करेंगे, पत्नी कहां से काम करेगी। तो ये रमादेवी भी आगे बोलेंगी अगले श्लोक में कि इस दुनिया में एक औरत, अगला ही श्लोक है, एक औरत सोचती है मेरा पति होगा तो मैं संरक्षण में रहूंगी, लेकिन वो मूछ दाढ़ी वाला पति जो खुद मरने वाला है वो किसी की क्या संरक्षण करेगा। संरक्षण इसलिए पति कौन है, श्रियः पतिर यज्ञपति धरापति, फिर क्या है, श्रियः पतिर यज्ञपति प्रजापति लोकपति धरापति, भगवान पतिर पतिम गतिश चांधक वृष्णि सात्वताम पति प्रसीदताम में भगवान सताम पति। हे भगवान मेरी रक्षा करो, जो श्रियः पति हैं सारे ऐश्वर्य के मालिक हैं, श्रियः पतिर यज्ञपति हैं, प्रजापति हैं सारे प्रजा के वही तो पालक हैं, हम कभी कभी आ जाते हैं रक्षा करने के लिए, कुछ मैनेजर बन जाते हैं, कुछ ये बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं वगैरह बन जाते हैं, लेकिन रक्षा करने वाला जो पति है वो एक ही है। क्या गाते हो, धन मोर नित्यानंद पति मोर गौरा चंद्र प्राण मोरा युगल किशोर। पति मोरा मोरा कौन है, गौरा चंद्र, और सभी का है, मेरा ही नहीं सबका है। तो ये अगर हम अनाथ हो जाते हैं तो ऐसे ऐसे बिलखते हैं। एक बार जन्माष्टमी थी कुछ साल पहले, यहाँ पे मंदिर में एक बच्चा गुम गया, जन्माष्टमी में भीड़ होती है तो बच्चा गुम गया, मैंने अपनी आंखों से ये देखा, बच्चा गुम गया, माँ बाप दिख नहीं रहते, बच्चों को मालूम नहीं, बच्चा पहले सोचा माँ बाप छुप गए, चलो मेरी तरफ ध्यान से देखिएगा, बच्चा ऐसे रोने लगा, मैं पहले देखा हंस रहा था तो भक्त भक्त देखिए हंस रहा है बच्चा लेकिन अकेला है, फिर थोड़ी देर में उसको दिखा कि माँ नहीं है सच में, तो ऐसे करने लगा, मतलब छुपा रहा था कि नहीं माँ छुपी होगी, मजाक कर रही होगी, फिर उसको लगा माँ सच में नहीं है, ऐसे रोने लगा, फिर लास्ट में ये रोने लगा, सिसकी बंद गई, उसकी सांस बंद गई, और आपने भी देखा होगा जब बच्चा बहुत डर जाता है बिल्कुल सांस रुकने वाली थी, तब मुझे याद नहीं सारंग ठाकुर प्रभु थे कि कौन था, उसको बच्चे को लेके गए सिक्योरिटी ऑफिस में बिठाया, बच्चे को शांत किया, अभी बेटा बस बस आ रहे माँ, फिर किसी तरीके से माँ बाप आए लेके गए। तो ये हालत हमारी होती है, और देख सकते हैं जब नास्तिक लोग जो होते हैं उनके पास एक ही, जब उनकी समस्या होती है जटिल समस्या जब जीवन में आती है वो एक ही चीज करते हैं, आत्महत्या, चाहे तो अपने आप को जला लेते हैं चाहे गोली मार देते हैं। और आज जैसे जैसे नास्तिकवाद बढ़ रहा है आत्महत्याओं की घटनाएं बढ़े जा रही हैं। तो ये आज के मॉडर्न साइंस ने हमको दिया, और वो नंद जिसकी मैंने चर्चा की थी वैदिक शिक्षा प्रणाली को काट के उसने ये दिया, और प्रभुपाद ने हमको बचाने के लिए उस वैदिक शिक्षा प्रणाली को वापस स्थापित करने के लिए इस कौन की स्थापना की। प्रभुपाद और चाहते हैं कि गुरुकुल स्थापना हो, बहुत जरूरी है, कैसे होगा बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पूरी तरीके से समाज अधोपतन की तरफ जा रहा है, गुरुकुल की बात ही नहीं करना चाहते ऊपर मिनिस्ट्री से नीचे तक, तो कैसे होगा बहुत समस्या है। वो इतनी बाधा है उसको स्थापित करने में कि प्रभुपाद भी नहीं कर पाए। प्रभुपाद जब हम इंडिया में थे, प्रभुपाद क्या नाम है वो जगह का, गीता नहीं कौन सा भवन है, बॉम्बे में एक भवन है, वहां पे प्रभुपाद अमेरिका में जाने के बाद एक लेक्चर में बोलते हैं मैं इन लोगों को बोल रहा था, मैं इंडिया के कुछ मिनिस्टर्स वहां पे बैठे थे बड़े बड़े लोग, उनको मैंने ही बोला कि मुझे तुम्हारा एक बच्चा दे दो, मैं उसको ट्रेन करूंगा ब्राह्मण बनने में। और ये प्रभुपाद की कल्पना थी, ये शास्त्रीय कल्पना है, एक ब्राह्मण होता है एक जगह पे बैठता है और कुछ बच्चे आ जाते हैं उनको ट्रेनिंग देता है, प्रभुपाद वहां से चाहते थे, प्रभुपाद शुरुआत से चाहते थे ये स्थापना हो इस शिक्षा प्रणाली की, जिसके कारण हम क्या हो गए ऐसे बेसहारा। अब थोड़ी समस्याएं, कैसी जटिल समस्याएं आती हैं इनको चर्चा करेंगे, और फिर लास्ट 5 मिनट क्षमा कीजिएगा मैं थोड़ा सा 2-3 मिनट ज्यादा ले लूंगा अगर आप लोग धैर्य धारण कर सकें तो समस्याएं कैसी कैसी होती हैं। पहली समस्या मृत्यु, सभी जानते हैं बहुत जटिल समस्या, जब मृत्यु का भय लगता है तो भगवान की शरण लेनी होती है, व्यक्ति कोई नहीं मरना चाहता कोई तो बचा ले, नास्तिक व्यक्ति भी बोलता है कोई तो बचा ले। दूसरी है जब हमारे प्रिय नहीं सिद्धांतों में, दूसरी बहुत कठिन समस्या है जो हम जब सिद्धांतों में द्वंद आता है, जब हम देखते हैं हम जिनको पूछते थे वो लोग सिद्धांतों से डिग गए, ऐसे इस्कॉन में बहुत हुआ है, गौड़िया मठ में हुआ है, श्री संप्रदाय में हुआ है, हम जिनको पूछते थे, जो हमारे सीनियर थे, वो जब सिद्धांतों से डिग जाते हैं, वो जब कुछ ऐसा कुछ करने लगते हैं, ऐसा कुछ बोलने लगते हैं जो इसका क्रॉस चेक शास्त्रों में नहीं है, और हमारी हिम्मत नहीं होती उनको पूछने की, क्योंकि हम जूनियर हैं, क्या होगा अगर पूछेंगे तो, नाराज हो गए तो. ऐसे समय पे मन में टग ऑफ वॉर चलता है. मालूम नहीं आप लोगों ने, कितने लोगों ने इस दौराहे से गए हैं, ये जो सेकंड पॉइंट है. देखिए, मन में एक टग ऑफ वॉर चलता है, शास्त्र एक बोल रहे हैं, ये एक बोल रहे हैं, क्या करूं, इनको बोला गया शास्त्रों में पूजनीय है, कैसे पूजा जाए वगैरह, बहुत सारा कुछ चलता है. ये बहुत खतरनाक चीज है. तीसरा, अपने पुत्र या पुत्री का मरण जब होता है, तब जिन्होंने देखा होगा, जब माँ का अपना बच्चा मर जाता है, जिसको बड़ा किया, अब लड़की शादी करने वाली होती है और उसको कैंसर हो जाता है, वो मर जाती है, तब पूरा संसार टूट जाता है उस माँ और उस बाप के लिए. चौथा, ये हास्यप्रद नहीं है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये हंसिएगा नहीं, लेकिन एक होती है समस्या ब्रह्मचारियों के जीवन में. जब ब्रह्मचारियों को समस्या आती है आश्रम की, बहुत कारण होते हैं, जब अंदर होता है क्या आश्रम चेंज करूं, क्या शादी करूं, नहीं करूं, करूं नहीं करूं, तो वो बहुत बड़ी दिक्कत. और चौथी पांचवी समस्या जो प्रभुपाद ने फेस की, गृहस्थ को संन्यास लेने की. प्रभुपाद बोलते हैं, जब मेरे गुरु महाराज सपने में आते थे और बोलते थे मुझे संन्यास लो, मेरी रूह कांप जाती थी, मैं सोचता था इनको कैसे छोड़ के जाऊंगा, मेरे बच्चे अभी भी मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं. तो ये बहुत जटिल समस्याएं हैं जो कि जीवन में आती हैं, तब हम बेसहारा हो जाते हैं. अब ये सेकंड पार्ट अब थोड़ा जल्दी जाएगा, मेरे साथ में बोलिए, जैसे श्लोक बोला था, अब आप समझ गए. ये श्लोक इस तरीके से, ओम राम ह्रीम हूम, तो मैंने बता दिया, ओम नमो भगवते ऋषिकेश आय का मतलब है, वो ऋषिकेश, वो भगवान जो सारी इंद्रियों के मालिक हैं, इंद्रियों के ऑब्जेक्ट जो हैं, इंद्रिय भोग के विषयों के भी वो मालिक हैं, ऐसे भगवान अनु सर्व गुण विशेष विलक्षित आत्मने, वो सारे गुण दिव्य गुणों के मालिक हैं, उनके उनमें वो सारे दिव्य गुण हैं. अनु आकुति नाम मतलब सारी जो हमारी मानसिक शक्तियां, नहीं एक्टिविटी की शक्तियां, इंद्रियों से जो हम काम कर सकते हैं उनके भोक्ता वो हैं, मतलब इंद्रियों से जो हम काम करेंगे उनके फल के भोक्ता वो हैं. चित्ती नाम मतलब जो हमारे चित्त में, हमारे मन में जो विचार आए वो हमको उन्हीं को डेडिकेट करने हैं. चेतसाम मतलब हमारे शुद्ध चेतन में जो विचार आए वो भी उनकी तरफ जाने चाहिए. विशेषाणाम चाधिपतये, और इन सारी चीजों की जो विशेषताएं हैं, जो इनके ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारी चीजों के मालिक कौन है, अधिपतय वही हैं. षोडश कलाय, और वो 16 जो तत्व हैं जिनसे ये सृष्टि बनी है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन बुद्धि अहंकार, ये जो 16 हैं, और 5 सॉरी मन और 5 क्या बोलते हैं विषय, ऐसे करके 16 आते हैं, मन बुद्धि अहंकार नहीं, मन वहां पे आ जाता है. तो ये जो 16 हैं इनके भी मालिक वही हैं, इसलिए वो छंदोमयम है, सारे छंद मतलब सारे श्लोकों से उनका गुणगान करना है. अन्नमय है, सारा अन्न उनको देना है. अमृतमय है, वो हमको अमृत प्रदान कर सकते हैं, हमको शाश्वत जीवन प्रदान कर सकते हैं. सर्वमयाय, और सारी चीजों के भोक्ता वही हैं, वो सर्वव्याप्त हैं. सहसे ओजसे तेजसे, सहसे मतलब वो इस शरीर को शक्ति देने वाले हैं, ओजसे मतलब इंद्रियों को शक्ति, और बलाय मतलब वो हमको क्रिया शक्ति देने वाले हैं. कांताय कामाय, कांताय मतलब हर किसी के प्रिय या पति वो हैं, कामाय मतलब सारी कामनाओं को पूर्ति करने वाले वही करते हैं, इसलिए नमस्ते मैं उनको प्रणाम करती हूं या करता हूं. उभयत्र भूयात, और वो कृपा करके, भूयात मतलब वो कृपा करके सारे लोगों को सद्बुद्धि दें, सारे लोगों को शांति दें और सारे लोगों का मंगल करें. तो मेरे साथ में बोलिए, 3 बार बोलेंगे चलेगा या एक बार बोलेंगे, ओम राम ह्रीम हुरूम, ओम नमो भगवते ऋषिकेशाय सर्वगुण विशेषै विलक्षितात्मने आकुतिनाम चित्तीनाम चेतसाम विशेषाणाम चाधिपतये षोडशकलाय छंदोमयाय अन्नमयाय अमृतमयाय सर्वमयाय सहसे ओजसे बलाय कांताय कामाय नमस्ते उभयत्र भूयात्. नमस्ते उभयत्र भूयात्, नमस्ते उभयत्र भूयात्। तो इसका अनुवाद पढ़ेंगे अब। मेरी समस्त इंद्रियों के नियंता तथा समस्त वस्तुओं की उत्पत्ति के स्त्रोत्र भगवान ऋषिकेश को मेरा नमस्कार है। वे समस्त दैहिक मानसिक तथा बौद्धिक कर्मों के अधीश्वर और उनके फलों के एकमात्र भोक्ता हैं। पांचों इंद्रियों के विषय तथा मन समेत 11 इंद्रियां उनकी आंशिक अभिव्यक्तियां हैं। वे समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हैं, जो उनकी शक्ति स्वरूपा होने के कारण उनसे अभिन्न हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति की दैहिक और मानसिक शक्ति के कारण रूप हैं, जो उनसे अभिन्न है। दरअसल वे समस्त जीवात्माओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले तथा उनके भर्ता हैं। समस्त वेदों का ध्येय उनकी उपासना है, अतः हम सभी उन्हें सविनय नमस्कार करते हैं। वे इस जन्म में तथा अगले जन्म में सदा हमारे अनुकूल रहें। अब तात्पर्य का दूसरा पैराग्राफ, जो लास्ट पैराग्राफ है, बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, जरा ध्यान से सुनिएगा। दिशा निर्देशन पे थोड़ी देर चर्चा करके, 5 मिनट चर्चा करके खत्म कर देंगे। श्री भगवान की सादर स्तुति करने वाले इस श्लोक की रचना ऐश्वर्य की देवी रमा ने की है और ये आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत है। गुरुदेव के दिशा निर्देशन या गाइडेंस में सबों को इस मंत्र का जाप करना चाहिए और इस प्रकार भगवान का पूर्ण और उत्तम भक्त बनना चाहिए। भौतिक बंधन से पूर्ण छुटकारा पाने के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए और मुक्ति मिलने के उपरांत भी वैकुंठ में श्री भगवान की पूजा करते समय इसे जपते रहा जा सकता है। निसंदेह सभी मंत्र इस जन्म तथा अगले जन्म के लिए हैं, जैसा कि श्री कृष्ण ने भगवद्गीता 9:14 में स्वयं पुष्टि की है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य उक्ता उपासते। ये महात्मा जन नित्य निरंतर मेरा कीर्तन करते हैं, करते हुए दृढ़ निश्चय पूर्वक चेष्टा करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी उपासना करते हैं। जो भक्त इस जीवन में तथा अगले जीवन में महामंत्र या किसी अन्य मंत्र का जप करता है, वह नित्य युक्तोपासक कहलाता है। तो अब इसमें मैं पूरी चर्चा जितनी सोची थी वो तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं दिशा निर्देशन पे जरा फोकस करूंगा। ये वाले स्लाइड को छोड़ देता हूं, पार्ट 3 पे आ जा रहा हूं। दिशा निर्देशन, जैसा मैंने पहले चर्चा की थी, इन वो जो बुद्धिजीवी मैंने दिखाए थे टोलेमी वगैरह, उनको दिशा निर्देशन क्यों की नहीं मिला, वो इधर उधर हो गए और बस जूझते रहे। परंतु अगर दिशा निर्देशन मिले, इसको नोट कीजिएगा, नोट द वर्ड यूज्ड इज गाइडेंस नॉट इंस्ट्रक्शन। दिशा निर्देशन है, इंस्ट्रक्शन मतलब होता है आज्ञा देना। आज्ञा स्टैंडिंग ऑर्डर है। भागवतम के सारे श्लोकों को हम रोज रिसाइटेशन कर सकते हैं, कोई गलती नहीं है उसमें। कोई सोचे मैं माला पे क्या जप करूं इस श्लोक का, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार रूढ़िवादिता में लग जाते हैं, अरे इस जप इस श्लोक को मैं माला पे कैसे करूं, डिविएशन है। डिविएशन नहीं, जप कर सकते हैं, बोला है अभी भी, सारे मंत्रों का जप कर सकते हैं। और सारे मंत्र भगवद्गीता के भागवतम के हम ओतप्रोत हैं, किससे, आध्यात्मिक शक्ति से। तो ये जो दिशा निर्देशन है, इसका क्या अर्थ है? दिशा निर्देशन का अर्थ है भगवान कैसे हैं। अर्जुन पूछते हैं 8वें अध्याय में भगवान से, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम। 6 क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन 2 कुल देंगे। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम, हे भगवान ब्रह्म क्या है और अध्यात्म क्या है? अध्यात्मवादी किसको बोलते हैं? और भगवान वहां पे बोलते हैं, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्मम उच्यते। वो अध्यात्म है, ब्रह्म तो कौन है, जो अक्षर है, जो कभी खत्म नहीं होता, मतलब भगवान। और उनका जो स्वभाव है, स्वभाव मतलब वो कहाँ रहते हैं, वो कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, कब उनको गुस्सा आता है, कब वो हंसते हैं, कब वो खुश हो जाते हैं, ये सारा उनका स्वभाव है। हम क्या करें उनके प्रति कि वो खुश होंगे, उनके परिकर कैसे हैं, उनका धाम कैसा है, इसको बोलते हैं स्वभाव। इस स्वभाव की जो चर्चा करता है, ये ब्रह्मांड क्यों बना, ये ब्रह्मांड क्यों खत्म होगा, इसकी जो चर्चा करता है वो कौन है, अध्यात्मवादी, ये भगवान बताते हैं। तो गाइडेंस हमको क्या लेनी है, ये गुरुदेव गाइडेंस देते हैं। क्या भागवत भागवतम, इसको आप पढ़ते जाइए और मैं बोल देता हूं, भागवतम को प्रभुपाद बोलते हैं विंडोज टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जब हम भागवतम पढ़ते हैं, भगवदगीता पढ़ते हैं, हमको आध्यात्मिक जगत कैसा है, भगवान कैसे हैं, भगवान का स्वभाव के बारे में जानकारी मिलती है। और इसको ठीक ठीक समझाने वाला जो है वो गुरु होता है। और ऐसे गुरु के मार्ग निर्देशन में, जैसे वो श्लोक अभी जो रमा देवी श्लोक बोली है, वो श्लोक में जब ऋषिकेश बोला और वहां पर कोई बोले ऋषिकेश का अर्थ है कि वो वो हिमालय में एक चोटी है ऋषिकेश, जहां पे वो जाता है और वहां पे रहता है, समाधि धारण करता है, वो ऋषिकेश जगह है ना, उसकी बात कर रहा हूं, तो वहां पे जाता है, वहां पे समाधि धारण करता है, उसको ऋषिकेश बोलते हैं। तो ये सही होगा क्या? नहीं, ऋषिकेश का अर्थ जो ऋषिकेश बताता है, मतलब वो सारी इंद्रियों का स्वामी है। ऐसा गुरु वो गाइडेंस बराबर देता है, सिर्फ इतना करना है, इंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं है भागवतम पढ़ने के लिए। और इससे होता क्या है, इससे उदाहरणार्थ गलत और सही परिकल्पनाएं होती हैं। ये एक को हम लेके समाप्त करेंगे यहां पे। गलत, जैसे शरणागति, ज्यादातर लोग सोचते हैं शरणागति, जब भगवान बोले सर्वधर्मान परित्यज्य, तो शरणागति की कल्पना ऐसी है कि पिस्तौल मुंह पे रखी कनपट्टी पे और बोला हैंड्स अप शरणागति हो। लेकिन यहां पे क्या बोल रहे हैं, प्रहलाद महाराज भी बताते हैं, यहां पे भी बताया, और प्रहलाद महाराज पिछले जो प्रार्थना है उनमें भी बताते हैं, सातवें स्कंद में भी बताते हैं, ये जो शरणागति ऐसी है जैसे एक बच्चा एक बाप को करता है। बच्चा जब बाप की शरणागति करता है डर नहीं होता, बाप उसको रोकता है इधर उधर जाने से, क्यों, वो रोड क्रॉस करेगा, घर में पूरी छूट है लेकिन रोड क्रॉस करने में रोक देगा, क्योंकि एक्सीडेंट हो जाएगा उसका, बुरा करने जाएगा भगवान रोक देगा। तो ऐसी जो शरणागति है जहां पे इंडिपेंडेंस पूरी है और खतरे से कोई हमको बचने की जरूरत नहीं, भगवान बचाएगा, कहीं पे भी चले जाएंगे भगवान बचाएगा। जैसे हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को चैतन्य प्रभु ने बोला जाओ प्रचार करो, और नित्यानंद प्रभु जाके बियर बार में घुस जाते थे, बार रेस्टोरेंट, कई बार तो विश्वालय में घुस जाते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्यों, कौन रक्षा करेगा, महाप्रभु ने आदेश दिया है वो रक्षा करेंगे, पूरी तरीके से समर्पण, लेकिन गलत काम करने की इच्छा नहीं, इसको शरणागति बोलते हैं। ये सही धारणा जो गुरु सिखाते हैं, ऐसे गुरु की, और इसको नहीं लेंगे, ऐसे गुरु के शरण में जाना, ऐसे गुरु के शरणागति से हमको भागवतम पढ़ना और उन भागवतम की प्रार्थनाओं को रटना और भगवान को अर्पण करना, इसका बहुत ज्यादा महत्व है। तो इसी के साथ हम समाप्त करेंगे यहाँ पे, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को प्रश्न होगा तो, छुट्टी हो गई ठीक है, बेल बज गई, लेकिन किसी को प्रश्न हो, क्योंकि गंभीर विषय लिया था, तो मैं मैनेजमेंट से, मैनेजर तो कोई नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट से जो भी एफएम पे सुन रहे हो तो माफी चाहता हूँ। किसी को प्रश्न हो तो दो प्रश्न ले सकते हैं। हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी, नंद, नंद, नंद एक राजा हुआ जो परीक्षित महाराज के पैदा होने के बाद, 12वें स्कंद में दिया है, 1150 साल बाद हुआ, जिसके समय से कलयुग एकदम उत्थान लिया, तो उसके लिए मैं, उसने एजुकेशन सिस्टम वगैरह को सबको खत्म कर दिया था, ये भागवतम के 12वें स्कंद में। और कोई प्रश्न, एक और ले सकते हैं अगर हो तो, ठीक है, तो यहां पे समाप्त करेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।